بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر, اور آپ سب کو صبح خیر کہتے ہیں.
میں بھی صبح خیر کہتا ہوں. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ کی خدمت میں.
بہت شکریہ.
اور کیسی ہیں آپ؟
اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟
بالکل ٹھیک ٹھاک, فرسٹ کلاس.
اور ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے, کیونکہ بہت دلچسپ اور منفرد پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے ہم آئے ہیں.
اور فیس بک کو بالکل مت بھولیے گا, facebook.com/SUT Morning Show.
بالکل, آپ کی رائے, آپ کے نظرات کے جو ہم ہیں منتظر ہیں.
بالکل, چلیں پھر ہمارا جو پہلا پروگرام ہے, جس کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز, کس چیز کے ساتھ آغاز کرتے ہیں ہم لوگ؟
ہم ہمیشہ یا تو کسی بڑے کے جو فرمان کے ساتھ ہوتا ہے کہتے ہیں, آج مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے ہم فرمان کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین, دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور ایک بہت ہی خوبصورت سے فرمان کے ساتھ, کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو کسی کو کوئی غلط رائے یا مشورہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
اسی سلسلے میں میں صبح جو ہے ریڈیو سن رہا تھا, اور ریڈیو ایران پہ بھی یہی آیا تھا کہ آج کل دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی کچھ بات کوئی کر رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں جی مجھے پتا ہے, اور آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ پوچھیں, ہم لوگ جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی مجھے پتا ہے اور یہ یوں ہوتا ہے اور یوں. دیکھیں یہ بہت ہی میرے خیال میں بری بات ہے کہ جو اس چیز کا پتہ نہ ہو اور پھر اس پہ ڈٹ جانا.
بالکل
کہ جی نہیں میں نے جو ہے
اگلے کو غلط انفارمیشن دینا, سب سے بات یہ.
بالکل صحیح. اور یہاں تو یہ بھی بتا دیں کہ غلط انفارمیشن کی بات رباب نے نکال دی, تو مولا کائنات امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرو, کیونکہ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرو گے تو اس دن تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی.
بالکل.
اور اچھی بات کسی کو بتانا بھی صدقہ ہے. تو یہ وہی بات آگی کہ آپ اگر غلط بات بتائیں گے تو اس کا الٹا ہوگا, اچھی بات ایک صدقہ ہے.
بالکل. تو آپ کے ساتھ مہمان کون ہے؟
میرے ساتھ جو ہے ڈاکٹر آصف راشد, انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہوں گے, میں ان سے بات کروں گا. آپ کے ساتھ کون ہے؟
ایس این جی پہ عطیہ نشاط صاحبہ ہوں گے, انشاءاللہ ہم بھی ان سے کھانے پینے کی مزیدار باتیں کریں گے.
اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں سیف صاحبہ کے پاس. سیف صاحبہ کا موضوع کیا ہے
آج؟ بادام ہے.
زبردست. تو بادام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ بادام کے کیا فوائد ہیں. البتہ بادام کے فوائد تو ساروں کو پتہ ہیں, لیکن چلیں ذرا دوہرا لیتے ہیں. تو چلتے ہیں سیف صاحبہ کے پاس.
ناظرین السلام علیکم, آج ہم بادام کے بارے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. بادام کے درخت کی لمبائی 8 میٹر تک پہنچ جاتی ہے. یہ خوبصورت درخت قدیم الایام سے مرکزی اور مغربی ایشیا, خاص طور پر افغانستان, ایران, شام اور فلسطین میں لگایا جاتا رہا ہے. اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور اسے بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے پھل کا باہری حصہ گہرے ہرے رنگ کا ہوتا ہے, جس کے نیچے بہت ہی سخت لکڑی جیسا خول ہوتا ہے, لیکن کچھ قسمیں ایسی بھی ہیں جن کا وہ خول بہت نرم ہوتا ہے, اور اسے کاغذی بادام اسی لیے کہا جاتا ہے. اسی خول کے اندر بادام کی گری ہوتی ہے, یعنی وہ حصہ جو ہم اور آپ استعمال میں لاتے ہیں. پھل جب ابھی کچا ہوتا ہے تو باہری سبز رنگ کا حصہ موٹا اور گودے دار ہوتا ہے, اور اس پر روئیں سے ہوتے ہیں. ابھی سخت گٹھلی والا حصہ جو بادام کا اصل چھلکا کہلاتا ہے, وہ پوری طرح سے وجود میں نہیں آیا ہوتا. یہ پھل جو ہوتا ہے کھانے میں کھٹا ہوتا ہے, اور اسے ایران میں چغالے بادام کہتے ہیں. بادام کے پتوں کو ابال کر پینے سے جگر اور پتے کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے. اسی طرح کڑوے باداموں کا تیل چہرے پر ملنے سے داغ, دھبے اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں. بادام بہت ہی قوت بخش میوہ ہے, لیکن چونکہ ثقیل اور دیر ہضم ہوتا ہے, اس لیے ایک دن میں 10 دانوں سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے. سرد مزاج لوگوں اور کمزور معدے والوں کو بادام کا استعمال شکر کے ساتھ کرنا چاہیے. رات کو اگر اسے پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کا جو سرخی مائل یا کتھئی جیسا جو چھلکا ہوتا ہے اسے اتار کر کھائیں, تو کہتے ہیں کہ یہ دماغ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اسی طرح اگر رات کو بھگو کر اور صبح کو چھلکا اتار کر بادام کو پتھر پر گھس کر تھوڑے سے شہد کے ساتھ استعمال کریں, تو یہ دماغ کے لیے اور زیادہ مفید ہوتا ہے اور قوت بھی بہت زیادہ دیتا ہے.
جی ناظرین, دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بادام کے بارے میں کچھ مزیدار باتیں آپ نے سنی. کہتے ہیں بادام, 7 بادام کو رات بھر بھگو کے صبح کھانے سے اگر اپنے بچوں کو دیتے ہیں نہار منہ, تو آپ کے بچوں کا جو ذہن ہے اور بھی تیز کام کرتا ہے. اور ہماری جو امیاں تھی یہ کام ایگزامس کے دوران بڑا کیا کرتی تھی, تو वो जो कहते हैं मुझे ये याद आ गया वो लम्हा अपना, तो मैंने कहा नाज़रीन को
बिल्कुल वो ज़माना जब अम्मी अबू ख्याल रखा करते थे, अब ज़माना ये आ गया कि हमें अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। बहरहाल ये ज़माने जो हैं वो कहते हैं ना मेरे बचपन के दिन जो है बड़े खूबसूरत थे, बिल्कुल बचपन के दिन जो है बड़े सुहाने सुनहरे होते हैं। और बचपन में जो अभी बच्चे जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं उनके लिए जो है ख़ास पैगाम मैं भेजता जाऊँ कि बचपन में जितना आपने इन्जॉय करना है इन्जॉय कर लें, उसके बाद बहरहाल इन्जॉय तो बहरहाल ज़िंदगी तो खूबसूरत है और ये इंसान के
बेफिक सी जिंदगी होती है बचपन में वो वाली जिंदगी।
बिल्कुल देखें बेफिक्र होती है, दूसरा ये होता पता होता है कि मैं गिरा तो मुझे पकड़ने वाला या मुझे उठाने वाला कोई है, तो ये बहुत बड़ी अलबत्त जो है अल्लाह ताला की जात हमेशा जो है इंसान के बिल्कुल नज़दीक होती है, लेकिन अगर उस जात को पहचाना जा सके उसकी मारफत को जाना जा सके। जी चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर आसिफ राशिद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डॉक्टर साहब जो है आज बड़ा अहम मौजू हमारे लिए लेके आए स्टूडियो में और वह अहम मौजू है कैंसर और कैंसर कैसे होता है क्या होता है उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब सलाम अर्ज करता हूँ आपको।
वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया आपकी पूरी टीम का सर,
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने जो है टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आप आए, शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नाज़रीन के लिए आप आए।
थैंक यू
डॉक्टर साहब। कैंसर के आपने कहा कि मौजू जो है उस पर बात करेंगे और कैंसर एक यहाँ से बात शुरू करते हैं इल्मी बात गुफ्तगू में जाने से पहले कि जब भी कोई कैंसर का नाम सुनता है तो अक्सर ऐसा ये होता है कि बहुत से लोगों हम में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कैंसर क्या है, तो ये समझा जाता है कि पता नहीं क्या है और कभी जो है इसके बारे में डिटेल कभी मैंने नहीं सुनी कि मसलन बयान की जा ये कि भाई है क्या चीज़, तो इसको बेसिक में सादे लफ्ज़ों में कैसे आप एक शख्स को बताएंगे भाई कैंसर है तो है क्या।
कैंसर एक्चुअली हमारे जिस्म में ना खुलिए होते हैं
ठीक है
सेल्स वगैरह
जी बिल्कुल सही,
वो कंट्रोल में यानी कि उसकी सेल डिवीजन कंट्रोल में रहती
तकसीम
है,
जो हो रही है
तकसीम होती है सेल की,
एक से दूसरा दूसरे दो से चार चार से आठ,
कैंसर जब हो ना तो उसमें कैंसर में सेल की जो डिवीजन है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि सेल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है।
अच्छा यानी दो तरीकों से आउट ऑफ कंट्रोल, या ये कि उसकी तकसीम
में कोई एरर आ जाए, एरर आ जाए, कोई गलती आ जाए, कोई डीएनए डैमेज हो जाए या
अच्छा।
कुछ वजह हो जाए मीन के केमिकली, इसके मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगा कि रीजन कौन कौन से, तो ये सेल की ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इट विल गोस टू द कैंसर।
कैंसर अच्छा इसके सादे लफ्ज में हम ये कहेंगे कि खुलिया अगर वो अपने होश आवाज खो बैठे
हाँ,
तो जो वो है कैंसर की तरफ जाना शुरू हो जाए
और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मीन उसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाए, उसकी
साइज बढ़ना
शुरू हो जाए, तो वो उसे हम कैंसर का नाम देते हैं।
अच्छा यहाँ पर एक डॉक्टर साहब और सवाल लोग पूछते हैं कि भाई कुछ सेल हैं वो बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो इसका मतलब बड़े जो है वो कैंसर सेल हैं क्या?
नहीं नहीं
ऐसा नहीं,
नॉर्मल सेल
वो अपनी जगह पर नॉर्मल है,
अपनी जगह अब लीवर सेल है वो अब अगर उसके सेल का साइज बड़ा है दूसरे सेल से तो वो कैंसर सेल नहीं है, वो तो नॉर्मल सेल है, फिजियोलॉजी है,
अपनी जगह पर वो नॉर्मल है,
अपनी जगह पर नॉर्मल है,
लेकिन वही कैंसर सेल अगर तब्दील हो जाए शायद किसी और शक्ल में आ जाए या उसकी तकसीम बहुत तेज
हो जाए या उसकी शेप चेंज हो जाए, उसकी डीएनए डैमेज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जब डीएनए डैमेज हुआ
ठीक है
तो ये डीएनए ही सेल की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है।
हाँ यानी खुलिए के अंदर हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है डीएनए,
डीएनए
और डीएनए जो है वो ऐसे है जैसे वो हमारा हमारे बदन का ब्रेन है,
ब्रेन
कंट्रोल
है,
कर रहा है,
कंट्रोल कर हर सेल को, हर सेल के अंदर डीएनए,
अच्छा हर सेल के अंदर,
हर सेल के अंदर डीएनए और ये कंट्रोल कर रहा है सारे एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ और ये सारी कंट्रोल ये डीएनए के थ्रू हो रही है और सारी सेल डिवीजन।
अच्छा तो यानी इसके मतलब है कि हर सेल के अंदर हमारे पास जो है एक ब्रेन, एक जो है
रेगुलेटरी मैकेनिज्म है,
ठीक है कंट्रोल करने,
कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म है,
वो खराब हो जाए तो या साइज में,
साइज में या शेप में उसकी तब्दीली आ जाएगी।
सही डॉक्टर जबरदस्त, ये जो है बड़ा वाजे हो गया मेरे ख्याल में हमारे लिए भी नाजरीन के लिए भी जो है कैंसर क्या कहते हैं किसमें। अच्छा डॉक्टर वजूहात क्या है इसकी?
कैंसर की एक्चुअली दो वजूहत, एक एनवायरमेंटल है एक जेनेटिक से यानी कि विरासत है। एनवायरमेंटल में ये स्मोकिंग आ जाएगी
ठीक है, माहौल से जुड़ी,
माहौल से जो हो रही है, फिर उसके अंदर एनवायरमेंट में सेकंड केमिकल हो जाती है, कोई आपने इस तरह के केमिकल यूज किए जो कि कार्सिनोजेनिक से कैंसर पैदा करते हैं
ठीक है,
तो वो भी मीन के अल्कोहल यूज करते हैं यूरोप कंट्री में, ये भी काज ऑफ कैंसर है
ठीक है। सही है
ठीक है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर और ये केमिकल, फिर रेडिएशन है
ठीक है,
ये सनलाइट्स और जो आप आर्टिफिशियल रेडिएशन देती है वो भी कास्ट कैंसर है,
रेडिएशन में
एक्स रे सीटी स्कैन्स ये जो भी रेडिएशन, और एक मैं रिपोर्ट WHO की पढ़ रहा था तो उसमें उसने मोबाइल की जो फ्रिक्वेंसीज जो रेडिएशन होती हैं वो भी एज ए कार्सिनोजेनिक्स हो सकती है और काज ऑफ कैंसर। मोबाइल्स की रेडिएशन में आपको ये एक चीज ऐड कर दूं जो कि WHO ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि इट एक्ट एज ए कार्सिनोजेनिक।
ओहो ये तो बड़े डॉक्टर
साहब, सो इससे भी आपने एहतियात करना है कि ये
सही। अच्छा दूसरा जो है वो हमारे पास
जीन में जब सेल डिवाइड होता है,
ठीक है,
एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ द सेल वो डीएनए की सही असेंबलिंग्स नहीं होती, रिकम्बिनेशन में कोई गलती आ गई, रीअसॉर्टमेंट में गलती आ गई, मिसप्लेसमेंट हो गया क्रोमोसोम का डिलीट हो गया, एड हो गया या डिलीट हो गया, इट विल लीड टू द कैंसर, और ये जेनेटिक्स कैंसर या इनहेरिटेड,
ये जो दो तीन तरह की तकरीबन हम कह रहे हैं, केमिकल हो गया, रेडिएशन हो गया, और तीसरा जो है जीन जब तकसीम हो रही होती है सेल में। अच्छा ये तकसीम वाला चक्कर तो डॉक्टर साहब तकरीबन जो है वो जैसे इस तरह होंगे जैसे गाड़ियां बन रही होती है तो रोबोट जो है वो गाड़ियों का दरवाजा लगा रहा है फलां लगा रहा है, तो उसमें कोई पुर्जा रह जाए या ना लगे तो बस गड़बड़
हो, आपके कैंसर की तरह, यानी कि आपके यूज में नहीं रहेगी,
यूज में नहीं रहेगी, ठीक है ठीक है, एक दरवाजे की जगह दो दरवाजे लग जाएं एक ही जगह पर, तो ये उसी शक्ल में, ठीक डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू को हम आगे चलाएंगे और इंशाल्लाह जो है कैंसर की जो आप मौजू लेके आए उसको आगे बढ़ाएंगे हम इंशाल्लाह। यहां छोड़ सकते बकवा लेते हैं, चलते हैं रुबाब के पास, देखते हैं रुबाब जो है हमें कहां पर लेके जा रही है।
बहुत शुक्रिया खुर्रम, और यहां पर हमेशा की तरह इमखान लगारी साहब ने हमारी खिदमत में सलाम अर्ज किया है, वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने लिखा है जिंदगी के आधे गम इंसान के दूसरों से गलत तवक्कात करके ही लेता है।
अच्छा
जी, तो बहुत शुक्रिया इमखान लगारी साहब, इसी तरह हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, इसी तरह कमेंट करते रहिए, हमें बहुत खुशी होगी। खैर नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है खूब सा वक्फा लेने का और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी अजीज़ नाज़रीन, दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। हकीम लुकमान की एक सबक आमोज़ दास्तान आपने सुनी, हमारी कोशिश यही होती है कि सुबह सवेरे एक खूबसूरत दास्तान आपको सुना सकें ताकि हम खुद अपनी ज़िंदगी पर उस पर अमल पैरा हो सके और किस सबक से सच में कोई सबक सीख सके। खैर चलते हैं खुर्रम के पास ताकि वो गुफ्तगू को जारी रख सकें। जी
बहुत शुक्रिया रुबाब जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया कि हमें जो है आपने इतनी खूबसूरत दिलचस्प किस्म की दास्तान दिखाई हमारे नाज़रीन को भी, और इंशाल्लाह इसी तरह और भी सेगमेंट्स जो हैं आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जो है तीन मिनट के लिए चलेंगे डॉक्टर साहब के पास और देखते हैं डॉक्टर साहब जो है कैंसर के बारे में और हमें क्या बताएंगे। डॉक्टर साहब इकसाम भी हैं क्या कैंसर की, कोई इकसाम?
हाँ, कैंसर की पांच अकसाम जो कि एक्चुअली ये अकसाम डिवाइड की कि जो सेल का किस्म जो टाइप ऑफ सेल इन्फेक्टेड है उसके मुताबिक उसका नाम दिया हुआ है।
ठीक ठीक सही ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल कार्सिनोमा है वो एपिथेलियल सेल्स जो इन्फेक्ट करता है, एपिथेलियल जो सेल की लाइनिंग GIT लंग्स वगैरह
जो हमारे जो खाने की नाली के अंदर
की एपिथेलियल झिल्ली है जो कि अगर उसका कैंसर हो तो उसे कार्सिनोमा कहते हैं।
ठीक है सही है।
अब सार्कोमा दूसरी टाइप है।
अच्छा
सार्कोमा में आता है कि कनेक्टिव टिश्यू वगैरह इन्फेक्टेड हो, बोन कार्टिलेजेस
हड्डियां वगैरह
तो ये दो तो एम है। इसके अलावा एक ल्यूकीमिया है, मीन के लाइफोमा एंड ल्यूकीमिया, ये ब्लड से रिलेटेड है, इसमें ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ नहीं होगी,
रुक जाएगी
साइज ऑफ द ग्रोथ, यानी कि सेल नहीं
तकसीम नहीं हो रहा,
बड़ा नहीं होगा, इस विल द नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज एंड शेप ऑफ द सेल इंक्रीज।
अच्छा अच्छा,
ये ब्लड सेल्स में आपने ल्यूकीमिया का आपने सुना
जी, बिल्कुल ल्यूकीमिया
और ये कॉमन तीसरी की।
अच्छा डॉक्टर साहब ये तो बताएं कि ये कैंसर जो है मुख्तलिफ किस्म के, इनके नाम इतने ड्रोनी क्यों हैं?
एक्चुअली ये ड्रोने इसलिए है कि ये जो सेल इन्वॉल्व है उसी सेल से वो ताकि उसे पहचाना जा सके कि ये कौन सा इन्फेक्टेड सेल है। सार्कोमा है तो इट मीन ये बोन और कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है, कार्सिनोमा है तो इट मीन ये एपिथेलियल लाइनिंग को इन्फेक्ट किया हुआ
है। सही, तो ये मेडिकल की टर्म में है,
टर्म जो कि इन्फेक्टेड सेल के मुताबिक उसको टर्मिनोलॉजी दे दी गई है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा मैं इस वजह से पूछ रहा कि अक्सर लोग जो है ये बात करते हैं कि भाई यार ये क्या कैंसर, कार्सिनोमा,
ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत बात की जाती है और आजकल ये बीमारी बहुत आम हो गई है, दिखने में भी आ रही है, अगर डॉक्टर साहब जरा सी वजाहत करें कि किस टाइप का कैंसर है ताकि नाज़रीन को जो है जो
देखने नंबर वन पे है, अगर फीमेल कैंसर देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन है।
अच्छा
डॉक्टर साहब उसमें तो अल्कोहल और उसका तो कोई मिसाल से या
नहीं, अल्कोहल का नहीं, उसमें जो एडिपोज टिश्यू वगैरह होते हैं ना, ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं
चर्बी के जो,
हाँ चर्बी वो जिन उसके एक्चुअली सेल के अंदर दो किस्म के मैकेनिज्म, एक ओंको जीन्स वगैरह होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं।
अच्छा
ट्यूमर सप्रेसर जीन का जो है वो रिसेसिव हो गए, वो डैमेज हो गए हैं, फॉर एग्जांपल
डीएनए ट्यूमर्स। ट्यूमर जो है, ये जो आपने बताई, ये जो जीन है ट्यूमर के, ये इनका काम क्या है?
जो एक ऑन्को जीन्स जो सेल के, वो तो कैंसर की ग्रोथ करने में मदद
देते हैं, ठीक है।
जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, वो उसको रोकते
हैं,
यानी को बैलेंस रखेंगे, ना ज्यादा बढ़े और ना
नॉर्मल में।
नॉर्मल है। अब ब्रेस्ट कैंसर में वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है,
अच्छा,
वो डैमेज हो जाते
अच्छे जीन जिसको हम कहते हैं,
दोस्त जो ट्यूमर को बनने नहीं दे रहे, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स जिन्हें हम कहते हैं P53PRB, ये इसकी डैमेज होना या इसका खत्म हो जाना सेल से,
ठीक है,
इसे न्यूट्रलाइज होना थ्रू एनी मैकेनिज्म,
ठीक है,
तो इसमें ये काज ऑफ कैंसर। और ये ब्रेस्ट कैंसर में एक चीज है और ऐड कर दूं कि BRCA एक जीन्स है, उसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाए
जेनेटिक्स
से भी है और एनवायरमेंटल भी है,
तो बेटी को भी हो जाए,
प्रोबेबिलिटी हो सकती है,
अच्छा,
क्योंकि वो जीन्स है वो ही माँ से बच्चे में आ गए, बच्चे में आ गए, ठीक है, और वो जीन जब इन द फ्यूचर एक्सप्रेस होंगे, इट मे लीड्स टू कैंसर,
बिल्कुल, क्योंकि उनमें थोड़ी सी खराबी आ गई है,
जरा सी खराबी आ गई
है, तो वो हो सकता है वो आगे जाते हुए या उनको जीन
कोई इस तरह को उसी एनवायरनमेंट मिले, उन्हीं जीन को एनवायरनमेंट या कोई भी रेडिएशन या इस तरह का स्ट्रेस मिल जाए,
बिल्कुल,
दिस जीन विल स्टार्ट टू एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस हुआ तो सेल ग्रोथ बढ़ना शुरू
हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे डायबिटीज की बीमारी में कहते हैं कि अगर आपकी माँ को, बाप को या नजदीकी रिश्तेदारों को है तो आपको ख्याल रखना है, जरूरी नहीं है कि 100% आपको
है,
बिल्कुल
बीमारी है लेकिन हाइड है,
हाइड है,
आप उसमें कोई इन्वायरमेंट कोई इस तरह का फैक्टर उसमें आएगा जो कि उस बीमारी को इनहांस करेगा,
बिल्कुल सही है, यानी उसको आपको जो है अगर आप मिठाई ज्यादा खाएंगे तो अगर मैं ज्यादा मिठाई खाऊं तो शायद मेरे लिए मुश्किल ना हो, लेकिन अगर आप ज्यादा अगर आपके खानदान में है तो आपके लिए जो है। बहरहाल गुफ्तगू को जारी रखेंगे डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद गुफ्तगू चल रही है। रुबाब कहाँ लेके जा रही हैं हमें आप?
जी मेरे ख्याल से यहाँ हमारे पास वक्त है खूबसूरत तराना सुनने का, अगर मैं सही कह रही हूँ, तो चलते हैं खूबसूरत तराना सुनते हैं, फिर अपने अजीज नाज़रीन की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। कुछ खूबसूरत मनाजर के साथ एक खूबसूरत तराना आपने मुलायजा फरमाया, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। नाज़रीन फेसबुक पर हम ऑनलाइन हैं, कोई भी सवाल कैंसर के मुतालिक हो आपका, कोई और सवाल, कोई और बात आप हमसे शेयर करना चाहें हमारे हफ्ते के मौजू के बारे में, कुछ भी जरूर बताएं, हम ऑनलाइन हैं फिलहाल। खैर नाज़रीन, वक्त को फ़ज़ाया के बगैर फ़ौरन चलते हैं खुर्रम के पास, सके वो गुफ्तगू।
बहुत शुक्रिया रुबाब, बिल्कुल जी बिल्कुल, हम जो बहुत अहम गुफ्तगू चल रही है डॉक्टर आसिफ राशिद के साथ, और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ईमेल एड्रेस भी है और मैसेज रिकॉर्डर के जरिए भी आप जो है बहरहाल अपना सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, फेसबुक के जरिए भी आप सवाल रिकॉर्ड जो है हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, कौन से कैंसर जो हैं आजकल जो है ज़्यादातर दिखने में मिल रहे हैं?
कैंसर जो मेल्स में सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर,
अच्छा,
वो 30% उसकी प्रेवलेंस है,
अच्छा ठीक।
फिर एसोफिगल कैंसर है, खुराक की नाली का
है, खाने की नाली का जो ठीक है, सही है।
फिर लंग्स का है, फेफड़ों का कैंसर बहुत ज्यादा, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्मोकिंग,
सिगरेट नोशी
उसका फैक्टर इंक्रीज कर देता है।
सिगरेट नोशी वाला जो है तीसरे नंबर पे आपने बोला, यानी तीसरे नंबर पे मर्दों पे
एक्चुअली द लंग्स जो है ना, जो फेफड़े सेकंड नंबर पे इसका कैटेगराइज किया हुआ है प्रोस्टेट के बाद,
हां
लंग्स का कैंसर दूसरे नंबर पे है,
ठीक है,
पहला प्रोस्टेट है, फिर लंग्स का कैंसर है,
ठीक है,
और उसके बाद वो खुराक की नाली का, किडनी का, गुर्दों का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर बहुत ज्यादा कॉमन बच्चों में, खासतौर पर ब्लास्टोमा,
ठीक है,
सी इसी तरह ये तो हो गए मेल के। अब फीमेल में ब्रेस्ट नंबर वन पे ब्रेस्ट कैंसर,
अच्छा,
इसमें 35% प्रेवलेंस है,
ओहो,
और ये काफी ज्यादा मीन के अलार्मिंग है फॉर ऑल वर्ल्ड वाइड, यानी कि फीमेल्स में स्पेशली यूरोप में बहुत ज्यादा ये प्रेवलेंस है,
ठीक है,
बहुत ज्यादा रिसर्च इस पे, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पे काम कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर पे,
ठीक है,
और इसके अलावा बाकी औरतों में बाकी भी कॉमन है, एसोफेगल कैंसर है, खुराक की नाली का, लंग्स भी है,
ठीक है,
लेकिन उसकी प्रेवलेंस कम है देन द ब्रेस्ट कैंसर।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर मुख्तसर सा अगर हमें बताएं कि प्रोस्टेट कैंसर जैसे आपने कहा कि नंबर एक पे है, फौरी तौर पर एक शख्स कैसे जाने कि उसको कैंसर हो रहा है?
एक्चुअली जब
ऐसी चीज है,
जब सेल डिवाइड हो रहा है मीन के इन रूटीनली, उसे तो कुछ नहीं पता चलेगा,
ठीक है,
जब एबनॉर्मेलिटी आई जाने की,
बिल्कुल वही,
प्रोस्टेट में समथिंग डिफिकल्ट, पेन स्टार्ट होगी,
ठीक है,
या डिफिकल्ट टू मीन के वो
पेशाब करने में
दिक्कत हुई,
दिक्कत हो रही,
तो उसने सीधा फिजिशियन के पास चले जाना, और फिजिशियन ने उधर टेस्ट उसके करने, उसकी पहले हिस्ट्री और क्लिनिकल फाइंडिंग के साथ उसे लैब में रेफर कर देगा,
ठीक है।
अब लैब में जब रेफर किया तो उसके जो एक तो ये उधर उसे एक ब्लड टेस्ट वगैरह करेगा मीन के कंप्लीट ब्लड काउंट, बिकॉज कैंसर में ये चीज़ सबसे अहम होती है, फिर उसके फर्दर टेस्ट वगैरह करेगा कि ये फिर इसके अलावा वो हिस्टोपैथोलॉजी तक ले जाएगा कि मीन कि ये सेल्स जो इन्वॉल्व है किस किस्म का कैंसर लोकलाइज है कि मैलिग्नेंसी में चला गया या वर्स फेवर।
सही। अच्छा, खवातीन में डॉक्टर साहब क्या किस तरह है कि ब्रेस्ट कैंसर को क्या किस तरह पहचाना जाए?
इसमें ब्रेस्ट कैंसर का तो ये एक मैसेज मैस जो है ना उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया,
गुदा टाइप की, गुदा टाइप की कुछ चीज, गुठली टाइप की कुछ चीज।
हाँ, ये पेल्पेट करेंगे तो वो मेन के एक सॉलिड नजर आपको फील होगी। तो उसके अलावा आप रेफर करेंगे बकाया उसके अपने लैब टेस्ट के साथ।
ठीक है।
तो लैब टेस्ट प्लस क्लिनिकल फाइंडिंग क्लास हिस्ट्री, हिस्ट्री आ गई उसके पीछे एंसेस्टर में तो नहीं ये प्रॉब्लम थी। तो ये चार पांच चीजों को वो इकट्ठा करके उसके डायग्नोसिस की तरफ ले जाएगा। अब एक जगह पे डायग्नोस हो जाए, मैं ये सजेस्ट करता हूँ खुदा ना खास्ता एक जगह पे डायग्नोस हो जाए उसे दो तीन लैब में रीडायग्नोस कराओ, चेक करवाओ ताकि ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट वेरिएशन में आ जाती
है, गड़बड़ हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि अब जैसे ही आपको जो है ब्रेस्ट में कोई सख्त किस्म का सॉलिड किस्म की चीज़ महसूस हो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं, और मर्दों में अगर पेशाब करने में दिक्कत या दर्द प्रोस्टेट में महसूस हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं। जी रुबाब
जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम, और मैं जरा साहब का वक्त लूंगी और एक बहुत अहम मौजू लेके आई हूँ। छोटे कद का मसला सबको पेश आता है आजकल, तो देखा जा रहा है कि छोटे कद की वजह से बहुत से लोग एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो नाज़रीन, तो आज आपका ये जो मेरा मौजू है ज़रूर सुनिए। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें बताया था कुछ टोटके जिस पर अमल करने से अपने बढ़ते हुए बच्चों की नशोनुमा में और भी बेहतरी ला सकते हैं। सबसे पहला जो नुकता हमारे पास ये था वो अगली तस्वीर, जी हाँ, ये इंडियन जिंसिंग के नाम से है, अश्वगंधा पाउडर भी इसको कहते हैं। आप इसका पाउडर लें और इसको नीम गर्म दूध के साथ आप मिला के रात को सोने से 45 मिनट पहले आप पी लें, और फिर तकरीबन ये जो आपका जो इसका पीने का जो दौरानिया है आप तकरीबन 45 दिन तक इसको जारी रखें। अपने बच्चों के कद के अंदर आप बेहतरीन जो आप बोल सकते हैं फ़र्क वो देखेंगे, उनका कद बढ़ने लगेगा। इसके अलावा कहा गया है, इस बात से तो हम सब खैर वाकिफ हैं कि दूध जो है वो हड्डियों की नशोनुमा के लिए कितना बेहतर है। कहते हैं दूध जो है वो कैल्शियम से सरशार होता है। अपने बच्चों को तकरीबन रोज दिन में 2 से 3 ग्लास दूध के आप दें। इसके अलावा जो तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसमें पनीर आ गया, दही आ गया या मक्खन वगैरह आ गया, वो भी नहीं तो उनके कद पे काफ़ी हद तक जो है असर पड़ेगा। आखिरी और सबसे अहम नुकता जो है वो ये है कि अपने बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के एक्सरसाइज ऐसे गेम्स में डालें जिसमें वो अपने जो मसल्स जो उनके हैं या उनके पट्ठे हैं वो खींचना शुरू हो जाएं, तो उनके कद में बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर इस बार पर बहुत ताकीद की गई थी कि छोटे बच्चों को जो है आप फौरन योगा की क्लासेस में डालें क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत होती हैं, तो आपके बच्चों के कद में काफ़ी नुमाया फ़र्क पड़ेगा। खैर नाज़रीन, तो कुछ बात हो गई कद बढ़ने की, लेते एक वक्फा और कुछ खाने पीने की मज़ेदार बातें करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, दोबारा खुश आमदीद। कहते हैं नाशपाती मीठा होने के साथ साथ बहुत से ऐसे ख़ास फ़वाद से भी सरशार है। मखसूसन कहते हैं नाशपाती छोटे बच्चों को दीजिए, उनके लिए बोलते हैं पूरी ग़िज़ा के तौर पर भी ये काम करता है। कहते हैं नाशपाती फ़ाइबर से सरशार है, तकरीबन दिन के 4 नाशपाती अगर आप खाते हैं तो इंसानी जिस्म में जो फाइबर की जो ज़रूरत होती है इसको पूरा कर सकता है। नाशपाती जो खाने वाले हजरात हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लो रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नाशपाती खाइए। इसके अलावा कहा जाता है बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपके जिस्म के जो निज़ाम दिफाई जो होता है उसको और भी मजबूत और बेहतर करता है। कहते हैं कि ये आपको दिल की बीमारियों से भी बचाता है। जिनको बुखार हो वो नाशपाती को उबाल के उसका पानी पीजिए, उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। कहते हैं एनर्जी बूस्टर है, जिनके जिस्म में एनर्जी की कमी है वो एक दाना दो दाना नाशपाती जो है वो खा ले तो उनकी एनर्जी भी वापस आ जाएगी। इसके अलावा कहा गया जिनको सांस की बीमारी हो वो भी नाशपाती के जूस का इस्तेमाल करें, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद साबित होगा। कहते हैं जिन बच्चों को कब्ज़ की शिकायत रहती है उनको नाशपाती या खुद नाशपाती का जो जूस है, ताज़ा जूस जो आप घर में ले रहे हैं वो उन बच्चों को पिलाएं। इसके अलावा कहा गया है ये डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद साबित होता है, इसलिए कि इसमें बिल्कुल नेचुरल तौर पर कुदरती तौर पर ही शुगर मौजूद होती है। कहा गया है बच्चों को आप ये दीजिए चूँकि इसमें फॉलिक एसिड बहुत मौजूद है, और जिन हजरात को एलर्जी की शिकायत है वो नाशपाती का इस्तेमाल करें, ये एलर्जीज़ को भी दूर करता है। खैर नाज़रीन, तो कुछ बात हो गई नाशपाती की, चलते हैं खुर्रम की तरफ ताकि वो गुफ्तगू को जारी रख सकें।
बहुत शुक्रिया रुबाब, बहुत ही मुफीद आपने गुफ्तगू की, और बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला ने हर जो चीज़ बनाई है वो किसी ना किसी खास मकसद के लिए बनाई है, तो बहरहाल ये फ्रूट भी इसी तरह। चलते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कैसे कंट्रोल किया जाए कैंसर को?
कैंसर को कंट्रोल जो है मुख्तलिफ मीन के आप अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करें।
ठीक है।
एक तो आप एक्सरसाइज करें।
ठीक है।
एक जो कि
अच्छा डॉक्टर साहब यहीं पर मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, कोई मानता ही नहीं है इस बात को, सारे कहते हैं कि जी एक्सरसाइज का क्या ताल्लुक है कैंसर से।
नहीं नहीं, मैं कल लिटरेचर एक जगह रीड कर रहा था कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापापन है, इट विल लीड टू द कैंसर अल्टीमेटली,
ठीक है।
और बाकायदा रिसर्च हुई है कि जो मोटापा जिससे ज्यादा है, जो फैटी लोग हैं उन्हें कैंसर की प्रेवलेंस ज्यादा है,
ठीक है। ये आप सुन लें नाज़रीन,
ये आप अपने आप को कंट्रोल करें, अपना वेट को कंट्रोल करें, सब्जियां ज्यादा खाएं, फल ज्यादा यूज करें, ग्रेन फूड्स फूड्स वगैरह यूज करें, और रेड मीट कम करते जाएं।
रेड
मीट आल्सो काज ऑफ कैंसर।
अच्छा, रेड मीट जो है गोश्त जो है,
हां मटन और बीफ वगैरह, मटन हो गया,
इसको कम करें,
इसको कम करें, ये कैंसर का एक फैक्टर है।
अच्छा, ये तो हमारे यहाँ बड़ा जो है दबाव
बहुत ज्यादा यूज, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जो कि जिसकी वजह से हमारे कैंसर की एक फैक्टर ये भी है कि कैंसर।
मुर्गी वगैरह ये मछली वगैरह ठीक है,
व्हाइट मीट ये मुर्गी और मछली, ये तो इसका प्रेवलेंस कम है कैंसर,
ये कम
रिपोर्टेड नहीं है अभी तक।
अभी तक ऐसे, लेकिन जो रेड मीट का छोटा गोट जो है दोनों
वो रिपोर्ट हुआ कि रेड मीट काज इज ए को फैक्टर फॉर एनहांसिंग द कैंसर।
सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत ही मुफीद आपके साथ गुफ्तगू रही, बड़ा ही अहम मौजू था और बड़ी ही अहम नुकात की तरफ आपने जो है जल्दी जल्दी हमें इशारा कर दिया, और इंशाल्लाह मैं यकीन करता हूँ कि हमारे नाज़रीन जो है इसके ऊपर गौर करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वर्जिश मोटापा जो है दुश्मन है, बहुत सी बीमारियाँ हैं, मोटापे से ब्लड प्रेशर है, मोटापे से डायबिटीज़ की बीमारी, पता नहीं क्या क्या चीज़। वर्जिश करें, एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट वर्जिश करें, लेकिन डेली करें, ठीक है डॉक्टर?
बिल्कुल
डेली करें। और उसके अलावा जो है, जैसे कि डॉक्टर साहब, सब्जियां फल इनका इस्तेमाल करें, और जो ये गंदम वगैरह इस तरह के होल ग्रेन्स हैं इनका इस्तेमाल करें, और बड़ा गोश्त छोटा गोश्त जो है इसका इस्तेमाल कम करें, मछली और मुर्गी को ज्यादा
इस्तेमाल करें।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत मुफीद गुफ्तगू, शुक्रिया अदा करता हूँ आप तशरीफ लाए पर। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुर्रम, मैं डॉक्टर आसिफ राशिद का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत ही कम वक्त पे अहम जो कैंसर की जो अहम नुकात की तरफ उन्होंने इशारा किया और हमें जानकारी दी। खैर नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ईरानी दस्तकारी यानी खातमकारी की वीडियो क्लिप देखने का, और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, दोबारा खुश आमदीद कहते हैं, और अब वक्त हुआ आपको दिल्ली ले जाने का, खैर सैर कराने के लिए नहीं, डॉक्टर अतिया निशात साहिबा हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से मौजूद हैं,
और सलाम अर्ज करते हैं आपकी खिदमत में। अच्छा अतिया निशात साहिबा, डॉक्टर साहब ये पहले ये बताएं कि मौसम कैसा है वहां पर, हम लोग तो तेहरान का मौसम बता बता के थक गए।
बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है।
ओह अच्छा, ये अच्छा, ठीक है,
तो आज का मौजूद ही गर्मी
भी जो है हमने इसी से मुतालिक रख लिया। जी डॉक्टर साहब, जो है क्या खाया जाए, क्या पिया जाए कि ये गर्मी का जोर तोड़ा जा सके?
ये बहुत पेचीदा सवाल है, अक्सर लोग गर्मी में बहुत परेशान हाल रहते हैं, और उसके लिए जो वो तदबीर ढूंढते हैं वो बहुत ही अजीब होती है। मैंने अक्सर देखा है कि गर्मी आई नहीं कि फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भर लेते हैं लोग लाके, और जूस जो मार्केट में मिलते हैं ट्रॉपिकाना वगैरह के, जो फ्रूट या वेजिटेबल जूस होते हैं वो लाके रख लेते हैं कि भाई गर्मी आ रही है।
सही है।
तो मैं आपको बता दूं कि नहायत ही गलत तरीका है गर्मियों को दूर भगाने का। जितना ज्यादा आप इस तरीके के मीठे मशरूबात पिएंगे, यानी जिसको हम कहते हैं स्वीटेंड बीवरेजेस, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, वो उस कदर आपको गर्मी से ये परेशान करेंगे, बेहाल रखेंगे। क्योंकि रिसर्च में भी और भी बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन इस बात को मानते हैं कि जिस कदर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने गजा में, आप उस कदर ज्यादा ही गर्मी से परेशान रहेंगे।
ठीक है।
तो जहां गर्मियां आई, आप इस चीज का ख्याल रखें कि आपको पीना तो बहुत ज्यादा है, पीने की चीजें हम ऑफकोर्स बढ़ा देते हैं क्योंकि प्यास ज्यादा लगती है, लेकिन पीने का मतलब ये नहीं है कि आप बाजार में जो मिल रहे हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, इनका इस्तेमाल बढ़ाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ चीजें हैं जैसे रोस्टेड और ग्रिल्ड आपके चिकन हो गया, फिश हो गया, या सी फूड हो गया, इसका इस्तेमाल थोड़ा सा हमें महदूद करना है, क्योंकि ये हाजमे के लिए बहुत भारी होते हैं। आप जिस कदर रोस्टेड या ग्रिल्ड या फ्राइड चीज़ें खाते हैं, खासकर नॉन वेजिटेरियन, उस कदर ज़्यादा ही आपके मेदे पे ज़्यादा जोर पड़ता है और उतनी ही हीट जनरेट होती है बॉडी में, और आपको उस कदर ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी कम करना है गर्मियों में। और तीसरी चीज है मसाले। वैसे मैं ये नहीं कहती आप मसाले बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि मसाले खाने से आपके जो गर्मी में होने वाले जैसे डायरिया हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, तो कुछ मसाले उससे हमें बचाते हैं। लेकिन बहरहाल मसालों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है, खासकर सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, यानी स्याह मिर्च भी बोलते हैं इसको, और दार चीनी, ये सब बेहद गर्म मसाले होते हैं, तो इनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है। हींग वगैरह का इस्तेमाल भी कम करना है क्योंकि ये गर्म मसाले होते हैं। और चौथी चीज़ जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कि बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना है। आप बहुत तेज़ गर्म खाना या बहुत तेज़ गर्म सूप पियेंगे तो एकदम से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और आप काफ़ी देर तक गर्मी से बेहाल और परेशान रहेंगे। तो गर्मी से बचने के लिए ये कुछ सिंपल टिप्स हैं कि आप इन चीज़ों का परहेज़ करें और इंशाल्लाह आपको गर्मी से बहुत राहत मिलने वाली है।
डॉक्टर साहिबा, गर्मी में कुछ खास किस्म के फल भी आते हैं, तरबूज वगैरह का भी वो होता है, इनका इस्तेमाल किस तरह जूस के तौर पर किया जाए, इनका जूस चीनी वगैरह के साथ मिला के, या खुद उस फल को उसी असली फॉर्म में खाया जाए?
देखिए, यहाँ पर मैं एक बहुत खास बातें बताना चाहती हूँ कि गर्मियों के जितने फल होते हैं, खासकर जिसमें पानी का मकदार बहुत ज्यादा होता है, जैसे तरबूज, खरबूजा हो गया, तो इसमें सोडियम भी बहुत होता है। आपने गौर किया होगा कि गर्मी में जब पसीना बहुत निकलता है तो आपके कपड़े में सफेद सफेद सा कुछ लग जाता है सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद, वो सॉल्ट होता है, नमक होता है। यानी गर्मियों में हमारे जिस्म से नमक बहुत ज्यादा निकलता है और इस वजह से बहुत से लोग बेहोश भी होते हैं या बीपी कहते हैं एकदम से लो हो गया गर्मियों में। तो ये जितने आपने फल बताए, खासकर तरबूज, इसमें सोडियम बहुत ही मुनासिब मकदार में होता है और अगर हम उसको उसकी असली हालत में खा रहे हैं, यानी तरबूज की फाक खा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मुफीद है। यहाँ तक कि जो उसकी बीज होती है अगर हम उसको भी सही से चबा के खाते हैं तो वो भी बहुत फरहत बख्श होता है और बहुत ही हाजमे को इम्प्रूव करता है, मुनासिब रखता है। हाँ, लेकिन अगर छोटा बच्चा है, वो तरबूज नहीं खा रहा है या आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, तो तरबूज का जो शरबत होता है वो भी बहुत फरहत बख्श होता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि हो सके तो उसमें चीनी मत मिलाएं। आप जिस कदर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जिस कदर चीनी का इस्तेमाल करेंगे, आप उस कदर प्यास महसूस करेंगे और उस कदर आपका पसीना ज्यादा निकलेगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर जो है आज गर्मियों में जो है रेडियो वगैरह पे जो है ढाबों वगैरह पे ये जूस मिल रहे होते हैं और उसके अंदर जो है वो 10% जूस होता है और 50% चीनी और जो बकिया फीसद बच जाता है वो रंग होता है। मजबूर है कौम, क्योंकि सस्ता होता है, जारी बात है, मजबूरी है, तो उसका कितनी हद तक नुकसान आप कहेंगी कि है?
देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि गर्मियों में वैसे भी हम सब जितने जो नहीं भी उस जूस को पी रहे हैं वो ससेप्टेबल होते हैं फूड बॉर्न डिजीजेस के, यानी हमें डायरिया होने के आम हालात से ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि बहुत से जो पैथोजेंस जिनको हम बोलते हैं, जो कैरियर्स होते हैं इन डिजीजेस के, खासकर साल्मोनेला वगैरह, ये गर्मी में और ह्यूमिडिटी यानी नमी उमस में बहुत ज्यादा अच्छे से पनपते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। तो ये जो स्ट्रीट फूड होते हैं या जूस वगैरह जैसे भी आपने कहा, इससे जिस कदर परहेज किया जाए उतना अच्छा है। और ये एक गलत फहमी है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम पैसे इतने नहीं है तो हम वो 10 रुपए का ग्लास गन्ने का जूस, तो हिंदुस्तान में बहुत आम पिया जाता है और आए दिन बच्चे डायरिया में मुबतला हो रहे हैं और उन्हें कॉलरा हो रहा है और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इन्हीं सब वजहों की वजह से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करें घर में, जैसे अभी रुबाब बहन ने कहा कि तरबूज का जूस, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आपको इनफैक्ट घर में जूसर की भी जरूरत नहीं है तरबूज का जूस निकालने के लिए। वैसे ही बेल का शरबत है, बहुत ही आसानी से बन सकता है, उसमें किसी भी किस्म की आपको मशीनरी की जरूरत नहीं है। बेल उबालें, उसका जूस निकालें, बर्फ मिलाएं और ठंडे पानी में थोड़ी सी शुगर मिला के आप बेल का शरबत बना सकते हैं, जो बहुत ही फरहत बख्श है। उसमें कोई कलर नहीं है एडेड, उसमें आपने कुछ भी गंदगी नहीं डाली है, आपने उसको साफ सफाई से बनाया है। और भी बहुत से ऐसे शरबत हैं, जैसे आपने शिकंजी नींबू की बना ली घर में, इसमें कोई भी ज्यादा पैसे नहीं लगते, कोई भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, कोई भी मशीनरी नहीं लगती। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें और इस चीज का ख्याल रखें कि आपको बाहर का जूस नहीं पीना है या बाहर जो बिक रहे हैं रोड साइड पे मशरूबात, उनसे परहेज करना है, तो बहुत आसानी से आप इससे बच सकते हैं और घर में आप मजे मजे के ये किस्म के मशरूबात बना के उससे अफाका मिल सकता है आपको और आप गर्मी भी एंजॉय कर सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत जबरदस्त आपने मिसालें दी, बिल्कुल सही, और इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन भी उसमें अमल करेंगे। छोटा सा यहाँ पर डॉक्टर साहबा छोटा सा वक्फा लेना है, जाइएगा कहीं नहीं, नाज़रीन आप लोग भी कहीं नहीं जाइएगा, छोटा सा वक्फा लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, डॉक्टर आतिया निशात हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली स्टूडियो से। डॉक्टर साहब, रुबाब सवाल पूछना चाहती हैं।
जी, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, बच्चे तो वैसे भी खाना नहीं खाते, और अब जब गर्मी पड़ जाए, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल खाना नहीं खाते, और गर्मियों में उनको डिहाइड्रेशन या लूज मोशन जैसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ऐसे बच्चों के जो मखसूस दांत भी उनके निकल रहे हों, उनको क्या देना चाहिए?
ये बहुत ही अहम मौजू है। अक्सर बच्चे इस कदर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हिंदुस्तान में तो खासकर और साउथ ईस्ट एशिया में देखा गया है कि बच्चों की मौत भी हो जाती है इससे, गर्मियों के सीजन में अगर लापरवाही बरती जाए तो। सबसे पहली बात तो ये है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। बच्चों को कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भी पीने के लिए दें। अगर वो पानी नहीं पी रहा है तो उसके पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के थोड़ी सी शक्कर डाल दिया, या संतरे के फाक को भी दो तीन फाक निचोड़ के थोड़े से पानी में वो डाइल्यूट करके आप बच्चे को दे सकते हैं, जिससे उसकी पानी, सबसे पहले कि पानी की मकदार उसकी जिस्म में पूरी होते रहे। दूसरी चीज़ ये कि आप उसको बहुत ज़्यादा मीठा मत दीजिए गर्मी में, क्योंकि जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो हमारे एक प्रोसीजर होता है जिसमें, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, तो हमारे बॉडी जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा जब शक्कर इस्तेमाल हम ज़्यादा करने लगते हैं तो हम अपने आप ही डायरिया हमें होने लगता है, हम ब्लोटेड फील करते हैं। तो बच्चों के लिए भी यही लागू होती है बात कि उन्हें भी बेहद मीठा देने से परहेज करें। जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट या आइसक्रीम खा रहे हैं तो उससे भी थोड़ा परहेज़ करा जाए। और तीसरी बात ये कि जो दांत निकलने वाले बच्चे होते हैं, अक्सर वो चीज़ें उठा के मुंह में रखते हैं क्योंकि उनके दांत में खुजली सी महसूस हो रही होती है मसूड़े में, इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है बच्चों को। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि उनके हाथ पैर थोड़ा साफ़ सुथरे रहें, और उन जो चीज़ें उठा के वो खा रहे हैं वो उन पर आप थोड़ा नज़र रखें। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि उनको रोज़ नहलाएँ, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, और पसीना बहुत ज़्यादा ना निकलने दें बच्चों को।
डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत मुफीद आपके साथ गुफ्तगू रही, और गुफ्तगू ऐसी थी जो अभी ज़रूरत है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जिस गुफ्तगू की शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, और खुदा हाफिज़। जी, तो बहरहाल नाज़रीन, आप लोगों ने डॉक्टर आतिया निशात की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुई होगी। हमारा जो है हफ्ता ख़त्म हो रहा है, अगला हफ्ता शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह हफ्ते के दिन, और हमारा हफ्ते का मौजू जो है वह बड़ा दिलचस्प है। हफ्ते का मौजू हम लोगों ने रखा है कि एक अच्छा रहनुमा कैसा होना चाहिए, क्या खसूसियात उसमें होनी चाहिए, और कैसे जो है उसको हम लोग इंतखाब कर सकते हैं, कैसे जो है हम ये जान सकते हैं कि ये सही रहनुमा है और ये सही जगह पर हमें लेके जाएगा। और
इस बारे में हमारी नाज़रीन की राय जो है वो ज़रूर आपको हमें देनी चाहिए कि आप हमें बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में।
बिल्कुल, और हफ्ते के दिन, खुद हफ्ते के दिन जो है सिनेचर के दिन जो है हमारे साथ डॉक्टर शबर अली इंशाल्लाह स्टूडियो में होंगे, और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ चाहता है। आप दुआ कर लें, आपके पास आज वक्त ज़्यादा है।
अच्छा, वक्त ज़्यादा है, बस इस दुआ के साथ कि हमारे अजीज़ नाज़रीन के चेहरे पर जो खूबसूरत सी मुस्कुराहट है हमेशा कायम और दायम रहे, हम दोनों को भी दुआओं में हमेशा याद रखें।
बिल्कुल, facebook.com/sutmorningshow कभी मत भूलिएगा, हम आपके साथ हैं जो भी आपका सवाल हो। और ये भी बता चलूं कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते डॉक्टर ज़हीर अब्बास भी हमारे साथ आएंगे, और बाल गिरने के बारे में जो मौजू है वो भी जो है उसके ऊपर वो बात करेंगे, तो जो सवाल हैं वो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए मुझे रुबाब मंसूरी को प्रोग्राम सुबह जिंदगी से इजाजत दीजिए।